मेरे सभी धर्मचारी भाइयों और सभी धर्म मित्रों को जय भीम। धर्मचारी ज्ञान ध्वज ने बड़ा लंबा ऐसा परिचय करके दिया, तो मैं सोच रहा था कि और क्या क्या बताएंगे वो। तो हम सीधे हमारे विषय की ओर बढ़ेंगे। आज का ये अपने शिविर का विषय है प्रतित्य समुत्पाद और स्पाइरल पाथ या ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग। तो ये जिसको 12 निदान या 24 निदान ऐसा भी कहते हैं, जिसको कार्य कारण भाव ऐसा भी कहते हैं, जिसको कर्म सिद्धांत कहते हैं, जिसको कर्म विपाक कहते हैं, तो ऐसे अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। कंडीशन को प्रोडक्शन ऐसा भी उसको कहा जाता है, या कंडीशनैलिटी ऐसा भी उसको कहा जाता है। हम सिद्धार्थ गौतम को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उस रात की बात, जिस रात में उन्होंने जो ध्यान किया, वैसे वो 49 दिनों तक ध्यान करते ही रहे थे, लेकिन वो आखिरी दिन जो था, आखिरी रात जो थी, उस समय आनापान सती ध्यान करते करते वे विपस्सना में चले गए, विपस्सना भावना करने लगे, और विपस्सना भावना करते करते उन्हें कुछ अनुभव उस रात में आए। तो पहला अनुभव उनका था कि उनके पूर्व जन्म उन्हें याद आए, जो बोधिसत्व कहकर उन्होंने जो पूर्व जन्म बिताए थे, तो उनको उन्होंने याद किया। और दूसरी बात जो उस रात में घटी, और वह है प्रतित्य समुत्पाद। यह प्रतित्य समुत्पाद का ज्ञान उनको उस रात में हुआ, और उसके पश्चात फिर सुबह सुबह उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि यह मूलभूत शिक्षा है प्रतित्य समुत्पाद, जिसका ज्ञान भगवान बुद्ध को उस रात में हुआ। और हमें पता है कि उसके पश्चात वे 7 सप्ताह तक अलग अलग जगहों में रह चुके हैं, ध्यान करते रहे हैं, चिंतन करते रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते रहे हैं। तो एक समय सकुल उदायीन नाम के एक परिव्राजक थे, और वे निगंठनाथ पुत्र, जिनको हम महावीर कहते हैं, उनके वे शिष्य कहलाए जाते थे। और उनको ये सकुल उदायीन को ऐसा लगता था कि मेरे गुरु जो निगंठनाथ पुत्र है, वो सर्वज्ञानी है, उन्हें सब पता है, जिसको हम ओमनिसियंस कहते हैं, उन्हें सब पता है। तो एक बार ये सकल उदाई ने अपने गुरु से पूछा कि भूतकाल के बारे में कुछ आप बताइए। तो ये बात उनके गुरु ने टाल दी, नजरअंदाज की और दूसरी बातें करने लगे। तो ये सकल उदयन बहुत निराश हो गए और उनको लगा कि और एक गुरु है जो गौतम बुद्ध है, उनके पास अगर मैं जाता हूं और मेरे सवाल का अगर वो जवाब देते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। तो वे गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और उनको भी यही सवाल कहते हैं कि पूर्व जन्मों के बारे में, भूतकाल के बारे में हमें बताइए। ये दोनों को भी, ये सकुल उदयन को लगता था कि ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही पहुंचे हुए हैं दोनों भी, और दोनों मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले गुरु ने तो नहीं दिया। बुद्ध के पास जाने के बाद बुद्ध को भी उन्होंने वही सवाल किया कि पूर्व जन्म के बारे में या भूतकाल के बारे में कुछ बताइए। तो बुद्ध ने उनको उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये जो सवाल था उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ धम्म की बातें बताना चाहता हूं, धम्म का ज्ञान देना चाहता हूं। तो ये भूत की बातें छोड़ दीजिए और धम्म की शिक्षा मैं अभी जो दे रहा हूं वो थोड़ा सुनिए। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा उस समय कि इसके कारण यह होता है, यह उत्पन्न होने से वह उत्पन्न होता है, और यह नहीं उत्पन्न होता तो उसका निरोध भी होता है। इसके बारे में हम अभी बहुत सारी आगे चर्चा करने वाले हैं। यह कार्य कारण भाव है, ऐसा बुद्ध ने उसको बताया, और बुद्ध ने कहा कि ये कार्य कारण भाव का जो वर्तमान का अनुभव है, उस वर्तमान के अनुभव को हम जानेंगे। भूतकाल के अनुभव को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी वर्तमान में हमें क्या अनुभव उसका मिल सकता है। बुद्ध ने उनको यह भी कहा कि अलग अलग गुरुओं को टटोलने के बजाय, अलग अलग गुरुओं की शिक्षा क्या है, कौन सर्वज्ञ है, कौन क्या है, इन बातों को छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये प्रतीत समुत्पाद जो है इसकी बात जान लीजिए, और उन्होंने उस समय एक पाली में गाथा कही और वो गाथा ऐसी है, लिख के बताऊं क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ही गाथा है, इसके ऊपर हमारा पूरा अभ्यास होने वाला है। मिलिंद एक टीचर है इसलिए गुरुजी को लिखने को कहा है। यहां इमस्मि सति इदं होति, इसका मतलब है कि यह होने से ऐसा होता है। इमस्य उपादा इदं उपजति, ये उत्पन्न होने से उसका निर्माण होता है। दूसरी लाइन यह है कि इमस्मि असति, ऐसा यदि नहीं होता तो वह नहीं होता, इदं न होती। इमस्य निरोधा इदं निरुद्धति, अगर इसका निरोध होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। हाँ जी, इसका अर्थ भी आगे आते जाएगा।
अच्छा,
पूरा यही है, अभी धीरे धीरे आते जाएंगे। सादे शब्दों में इसका अर्थ ऐसा है कि यह अगर उत्पन्न होता है तो उसका निर्माण होता है, और यह अगर उत्पन्न नहीं होता तो वह नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को निर्माण होने के लिए कुछ तो भी कारण लगता है। यदि कोई कारण नहीं है तो कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, और जब तक यह कारण है तब तक वह चीज रहेगी, और यह कारण जब नष्ट हो जाएगा तो वह चीज भी नष्ट हो जाएगी। यह समझ में आएगा? कोई चीज निर्माण होती है उसके लिए कुछ क्या होता है? कारण होता है, और जब तक यह कारण रहता है वह चीज मौजूद रहती है। लेकिन जब वह चीज नष्ट हो जाती है, वह कारण नष्ट हो जाता है, तो वह चीज भी नष्ट हो जाती है, वो उसका निरोध हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। निरुद्धति यानी समाप्त होना, नष्ट होना। बुद्ध के जमाने में अलग अलग 6 गुरु अपने अपने तरीके से लोगों को शिष्य बनाते थे, अपनी अपनी शिक्षाएं देते थे। तो एक बुद्ध के ही शिष्य थे जिनका नाम था मालुम्य पुत्र, और ये भिक्षु भगवान बुद्ध के पास चले गए और उन्होंने उनको कहा कि यदि आप मेरे 10 सवालों के जवाब नहीं देंगे तो मैं चिवर उतार दूंगा, मुझे आपका धम्म नहीं चाहिए। तो उन्होंने 10 सवालों की फिर फेरिस भगवान बुद्ध के सामने रखी। तो वो सवाल ऐसे है, पहला सवाल है, दुनिया शाश्वत है क्या? दूसरा सवाल है, दुनिया अशाश्वत है क्या? इटर्नल जिसको कहते हैं, इटर्नल नॉन इटर्नल। दुनिया शाश्वत है क्या? दूसरा सवाल है, दुनिया अशाश्वत है क्या? दुनिया अनंत नहीं है क्या? दुनिया अनंत नहीं है क्या? तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, दुनिया अनंत है क्या? पांचवा सवाल है, दुनिया शरीर और आत्मा एक ही है क्या? पांचवा सवाल है, शरीर और आत्मा एक ही है क्या? और छठा सवाल है, शरीर और आत्मा अलग अलग है क्या? सातवां सवाल उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व होता है क्या? मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व होता है क्या? आठवां सवाल उन्होंने पूछा था कि मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व नहीं होता है क्या? मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व नहीं होता है क्या? नौवां सवाल उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद तथागत का अस्तित्व रहता है और रहता नहीं, ऐसा है क्या? जी, तथागत का अस्तित्व मृत्यु के बाद रहता है, रहता भी है या रहता भी नहीं, इस तरह का सवाल पूछा है। और दसवां सवाल उन्होंने पूछा था, नब्बे सवाल में रहता है भी और रहता नहीं भी, और यहां उन्होंने कहा अस्तित्व न रहता है नहीं रहता है। ये प्रश्न ही बड़े जटिल है। अस्तित्व न रहता है और न रहता भी नहीं, रहता भी नहीं, न रहता है और रहता भी नहीं, ये प्रश्न ही इतने कठिन है हमारे समझने के लिए। लेकिन बुद्ध बहुत होशियार थे। बुद्ध ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया, और इसलिए कहते हैं कि ये दस सवाल जो है बुद्ध ने आखिरी तक अनुत्तरित रखे हैं, इसका किसी को जवाब नहीं दिया। अनुत्तरित सवालों की ये लिस्ट है, और बहुत सारे ये जो भिक्षु है यही पूछते थे, बाकी के संप्रदाय वाले भी लोग यही पूछते थे, ऐसे ही सवाल खड़े करते थे। तो बुद्ध ने इन सवालों के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि मालुम्य पुत्र, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे एक आधा व्यक्ति उसको जहरीला बाण लगा हुआ है, किसी ने जहरीले बाण से उसको क्या किया है, मारा है, तो उस जहरीले बाण को निकालने के लिए जब डॉक्टर आते हैं तो आप बोलते हैं कि ये बाण मत निकालो, अभी पहले मुझे ये बताओ कि ये किसने किया, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसके बालों का रंग कैसा था। तो ये सवाल पूछते पूछते वो क्या हो जाएगा, उसको बाण अभी निकालना है, वो तीर निकालना है, वो बात रह गई और ये बाकी के सवाल पूछ रहा है, तो इसमें उस आदमी का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बुद्ध ने ये प्रश्नों को अव्याकृत ऐसा कहा है, व्यक्त नहीं किया है, इसलिए उसको अव्याकृत कहते हैं। ये प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ मालूम के पुत्र को यही कहा कि इन सवालों से जो तुम्हारा ब्रह्मचर्य जीवन है, जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इससे तुम्हें कोई ऊंची अवस्थाएं जैसी कि निबिदा है, वैराग्य है, प्रश्रब्धि है वगैरह वगैरह, जो ऊंची अवस्थाएं हैं, उन ऊंची अवस्थाओं को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे खाली ये सवाल करके। और इसलिए मालूम के पुत्र को उन्होंने कहा कि ये सवाल उपयुक्त नहीं है तेरे जीवन के लिए, तेरे विकास के लिए ये प्रश्न उपयुक्त नहीं है। तो भगवान बुद्ध हमेशा ही प्रैक्टिकल बातों पर ज्यादा जोर देते थे कि व्यवहार में हम अपने कैसे उतारें, अपने जीवन में उसको कैसे उतारें, इसके बारे में ज्यादा उन्होंने कहा है, ये ना कि ऐसे जो प्रश्न है उसका कोई भी अपने विकास से ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया नहीं है। और ये सभी बातें उनसे क्या होने वाला है, उनसे सिर्फ दुख ही दुख पैदा होने वाला है। ये सब बातें जब हम सोचते रहेंगे, इसका कारण सोचते रहेंगे, तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। जब कोई घटना घटती है तो सिर्फ एक ही कारण उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। घटना तो घटी है, जो कुछ हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कारण अगर हम ढूंढते हैं तो ये उतना सा ठीक नहीं होगा, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम, तो इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। या उसको तनाव कहेंगे। तनाव। अभी तनाव क्यों पैदा होता है, स्ट्रेस क्यों पैदा होता है? अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कुछ लोगों को पता होगा, तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक है थकावट, दूसरा कारण हो सकता है तो तनाव जब पैदा होता है तब ये अलग अलग कारण है उसके, इन कारणों की वजह से हमें तनाव पैदा होता है या तनाव हम महसूस करते हैं। तो थकावट भी हो सकती है, संयम का अभाव हो सकता है, नींद नहीं आती, बीमारी है, व्यायाम का अभाव है और काम का दबाव। अगर ओवर स्ट्रेस हो गए काम में, काम ज्यादा हो गया तो भी तनाव आ जाता है। लेकिन इसके और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। अभी व्यायाम का अभाव अगर है तो फिर आदमी सुस्त हो जाता है, उसको बीमारी बीमारी से वो घिर जाता है, या बीमारी अगर है तो थकावट आ जाती है। तो यही कारण एक यानी जिसको क्रॉस करते गए तो कोई भी कारण, किसी भी कारण, ये कारण के लिए, ये कारण से ये भी होता है, ये कारण से वो भी होता है, ये कारण से वो भी होता है, उससे ये भी होता है, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो तनाव ये कैसा पैदा होता है, तो यही कारण नहीं है तो इसके कारण वो भी पैदा होता है। हम संयम नहीं रखते, कंट्रोल नहीं रखता रहता हमारा, हमारे बातों पर कंट्रोल नहीं रहता, उसका कारण क्या है? उसका कारण हो सकता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम बहुत सुस्त हो गए हैं। हो सकता है कि काम का प्रेशर ज्यादा है, उसके कारण संयम नहीं है हमारे अंदर। तो ये सब बातें जब हम देखते हैं तो ये एक एक अगर निकल गया, ये प्रॉब्लम निकल गया, तो तनाव भी खत्म हो सकता है। तनाव निकालने के लिए सिर्फ एक ही निकालना काफी नहीं है, तो धीरे धीरे हम ये सब को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा, तब हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो ये कार्य कारण भाव है, इसके कारण वो होता है, उसके कारण ये होता है। तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो ये बुद्ध की शिक्षा है, वो भी हम अभी समझ सकेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर ये निर्भर है। अगर वो कारण खत्म हो गया तो उसका जो परिणाम है वो भी खत्म हो जाएगा। कितनी बजे थोड़ा कितनी बजे थोड़ा अभी यहां ये व्यायाम का अभाव कहा है, व्यायाम का अभाव ये क्यों होता है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। इसका कारण ये भी हो सकता है और इसका कारण ये भी हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग जो एरोज हम देख रहे हैं, तो ये इस तरह से बहुत ही ये जटिल बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि तनाव कोई एक चीज से नहीं हो रहा है, तो अलग अलग बातें हैं, और ये अलग अलग बातें बातों से तनाव नहीं है, तो ये बात से ये यहां नींद नहीं आ रही है, बीमारी के वजह से थकावट आ रही है, वगैरह वगैरह, तो एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो ये अगर खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, या ये खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, इस ये नहीं है तो ये भी फिर नहीं रहेगा। तो इन बातों को अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे पर ये बात सभी बातें निर्भर है, एक नष्ट हो गई तो दूसरी भी नष्ट हो सकती है। तो बुद्ध का सिद्धांत यही है, वो कहते हैं कि ये होने से वह होता है और वह नहीं है तो वह भी नहीं रहेगा। इतनी सिंपल बात बुद्ध ने कही है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आने के कारण हम दुखित हैं। हमारा दुख क्यों है, तो ये बातें बुद्ध ने जो बताई है वो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम दुखी हैं। तो दुख को अगर पूरी तरह से निकालना है तो इन बातों को अगर हम समझ लेते हैं तो दुख से हम दूर हो सकते हैं। इसका पहला परिणाम ये जो भगवान बुद्ध ने जो ये गाथा बताई है उसका पहला परिणाम अगर किस पर हुआ होगा तो ये जो पांच परिव्राजक बुद्ध के साथ सारनाथ में मृगदाय वन में जिन्होंने शिक्षा ली और जो पहले शिष्य बन गए तो उनको बुद्ध ने यही बात सिखाई, ये प्रतित्य समुत्पाद ही उन्होंने सिखाया है उनको। और इस प्रतित्य समुत्पाद समझने के बाद ऐसा कहते हैं कि एक एक के बाद पांच पांचों भी क्या हो गए, अरहंत बन गए। तो ये प्रमुख शिक्षा है प्रतित्य समुत्पाद की, जिनके कारण ये पांच शिष्य वो अरहंत बन गए। तो एक स्टोरी ऐसी है कि बुद्ध के जमाने में नालंदा गांव के पास दो युवा रहते थे जिनका नाम सारिपुत्र और मोगलायन था। एक का नाम मुझे पता है, दूसरे का नाम पता है? कोलित, कोलित एक नाम है और उपतिष्ठ नहीं कोलित अनुसारी पुत्र तो क्या नाम, तो वही पूछ रहा हूँ मैं मैं वही पूछ रहा हूँ, तो अभी मुझे याद नहीं है वो, लेकिन ठीक है। ये दो बड़े गहरे दोस्त थे, गहरी दोस्ती थी उनमें, और वे दोनों भी गृह त्याग करके बाहर निकले। ये दोनों भी श्रमण थे, तो बचपन से ये दोस्ती होने के कारण उन्होंने जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग क्यों किया, तो गुरु की खोज करने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। उनको एक गुरु चाहिए था, ऐसा गुरु चाहिए था जो उनको, उन्हें जो चाहिए, जो डेथलेसनेस कहते हैं, अमरत्व जिसको कहते हैं, उसका कुछ अनुभव उस गुरु के पास मिले, तो इसलिए वो निकल पड़े थे। और उन्होंने एक दूसरे से करार ऐसा किया था कि हम दोनों में से किसी को भी पहले अगर कोई शिक्षा मिलती है तो उसने दूसरे को बताना है। फिर एक दिशा में सारिपुत्र चले गए, दूसरी दिशा में मोगलायन चले गए। और सारिपुत्र जब ज्यादा दूर नहीं गए, वो राजगृह के पास ही थे, तो उन्होंने दूर से आते हुए एक श्रमण को देखा। और उस श्रमण में सारिपुत्र को ऐसा लगा कि यह व्यक्ति प्रबुद्ध है, यह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रबुद्ध है। तो जैसे जैसे वे उनके यानी नजदीक जाने लगे, क्योंकि वो जो श्रमण है वो भिक्षाटन कर रहे थे, तो उस समय तक वो शांत रहे। उनका भिक्षाटन खत्म होने के बाद फिर उनको जाके उनको देखा, उनसे बहुत प्रभावित हो गए वो, और फिर उन्होंने सीधा उनको पूछा कि आपके गुरु कौन है। अपने पास ऐसे सीधा सीधे सवाल करते हैं, अगर पूछना है तो डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कभी कभी आपकी कौन सी जाति है, डायरेक्ट पूछते हैं, उसको बुरा लगे या भला लगे वो कुछ भी हो, लेकिन जाति पूछने का है, बस पूछ लेते हैं। उसको क्या लगेगा ये, इसका अंदाजा हम नहीं करते हैं और सोचते भी नहीं। तो वैसे ये मेरा ख्याल है भारत की परंपरा है कि डायरेक्ट पूछने का। तो इन्होंने तुम्हारे गुरु कौन है, तो ये जिनको सवाल पूछा था वो है अश्वजीत। अश्वजीत को उन्होंने ये सवाल किया। अश्वजीत बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही शांत और चेहरे पर प्रसन्नता, ये सब देखकर उन्होंने उनके पास जाकर ये अश्वजीत को प्रश्न पूछा। तो अश्वजीत ने तुरंत उनको जवाब दिया कि मेरे गुरु गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने शाक्य कुल से गृह त्याग किया था और फिर वो सत्य की खोज के लिए बाहर निकल पड़े थे। तो सारिपुत्र को यह सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया अश्वजीत को, इसको पाली में असजी कहते हैं और संस्कृत में अश्वजीत कहते हैं। तो दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, तुम्हारे गुरु अगर बुद्ध है तो उनकी शिक्षा क्या है। तो अश्वजीत ने बड़ी विनम्रता से सारिपुत्र को कहा कि मैं अभी अभी बुद्ध के साथ धर्मांतरित हुआ हूं, बुद्ध ने मेरा धर्मांतर किया है, मुझे दीक्षा दी है, लेकिन जो कुछ भी मुझे उनसे जो समझ में आया उतनी बात मैं आपको कह सकता हूं। तो उन्होंने यही बताया जो हम बातें कर रहे हैं अभी, यही बताया है। तो संस्कृत में ये गाथा ऐसी है, ए धर्मा हेतु प्रभवा, हे ये धर्मा हेतु प्रभवा, हेतु तेसा तथागतो यावदत, हेतु तेसा तथागत यावद यावदत, तेसंच यो निरोध, तेसंच यो निरोध एवं वादी महाश्रवणः, एवं वादी महाश्रवणः। तो अश्वजीत ने उनको सीधी बात ऐसी कही कि बुद्ध ने उन वस्तुओं का मूल बताया है जो कारण से उत्पन्न होती है, बुद्ध ने उन वस्तुओं का मूल बताया है जो कारण से उत्पन्न होती है, उसके निरोध का भी उन्होंने मार्ग बतलाया है, उसके निरोध का भी उन्होंने मार्ग बतलाया है। यह उस महाश्रमण का सिद्धांत है, यह उस महाश्रमण का, महाश्रमण मतलब बुद्ध का सिद्धांत है। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अश्वजीत ने बुद्ध ने जो जो कुछ उनको सिखाया था वो बताया। इतनी ये जो गाथा है इतनी सुनकर सारिपुत्र वहां के वहां श्रोतापन्न बन गए, सारिपुत्र वहां के वहां श्रोतापन्न बन गए, उनको अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उनको ये पता चला कि ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ सत्यता है, उसमें इसमें कुछ तथ्यता है, तथ्यता है। और फिर सारिपुत्र ने इस पर विचार किया, चिंतन किया कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका कुछ कारण होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका कुछ कारण होता है, और जब वह कारण नहीं रहता है, जब वह कारण नहीं रहता तो उसका लय भी होता है, वो उसका निरोध भी होता है। तो इतनी बात सुनकर श्रोतापन्न बन गए सारिपुत्र और तुरंत वो भागते भागते मोगल लाइन को ढूंढते गए कि मोगल लाइन कहाँ है, क्योंकि उनको पहले बताना है कि मुझे एक गुरु मिला है और ये बातें सब उनको बतानी है। और फिर मोगलायन को मिलने के बाद दोनों भी भगवान बुद्ध के पास चले गए और वे पहले ये प्रमुख सेनानी जिनको हम कहते हैं दो सेनानी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध के बाद में बन गए हैं। यह जो गाथा है भगवान बुद्ध ने ये जो प्रतीत समुत्पाद की गाथा बताई है वो कोई भी संप्रदाय बुद्धिज्म का हो उन्होंने मान ली है, उन्होंने उसको अपनाया है, कोई भेदभाव उन्होंने कभी कोई भी संप्रदाय ने नहीं किया। भले ही वो चीन में गई हो तिब्बत में गई हो, क्योंकि हर एक खंडरों में और जो जो कुछ उत्खनन हुए हैं उसमें ये गाथा लिखी हुई दिखाई देती है। तिब्बती लोग तो ऐसा करते हैं कि ये गाथा दो पंक्तियों की गाथा वो लिखते हैं और जब बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना होती है तो ये हजारों की संख्या में वो जो पेपर्स है वो लिखते हैं और वो बुद्ध के मूर्ति के अंदर डालते हैं और फिर उसकी वो प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण ये गाथा है और यह कहते हैं कि बुद्ध धम्म का सार अगर किसी में हो तो ये गाथा में है। सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा बुद्ध की शिक्षा और कोई नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो। इसका संदर्भ अलग अलग सूत्रों में भी आया है, अर्य पर्यसन सूत्र में भी इसका संदर्भ आया है। बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति कैसी हुई ये बात उस सूत्र में बुद्ध ने स्वयं ने बताई है। तो इस बात को लेकर अभी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम दुख पीड़ित हैं, तो दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रज्ञा प्राप्त करना जरूरी है। दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है, हमें प्रज्ञा प्राप्त करनी जरूरी है। तो सवाल डिस्कशन के लिए यह है कि सही भी हम इतनी गहराई में ये बात सोचते हैं क्या कि मैं दुखी हूं, दुख से मुझे मुक्त होना है, क्या कारण है कि मैं दुखी हूं? तो इस पर आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए। कि और दूसरा एक सवाल है कि सारिपुत्त को सिर्फ ये गाथा सुनकर श्रोतापन्न वे बन गए। अब हमने तो बहुत बार बहुत बहुत अलग अलग गाथाएं सुनी हैं, पूरा किताब पढ़ा है, सब याद भी है, लेकिन हम अभी कहां है ये दूसरा सवाल है। सवाल पता कौन से सवाल है? हाँ जी, आज के दिन ये दो सवाल ही पर्याप्त है, तो अब यहां रुकेंगे हम।